अस्सलाम वालेकुम, ये पार्ट 7 है, किताब 10 करोड़ में दो शैतान, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ मजहर करीम MA। तो आइए सुनते हैं पार्ट 7। इमरान ने मुबीन का जवाब दिया और फिर उससे पहले कि सफदर कोई और सवाल करता, इमरान तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सफदर आके खड़े रह गया। आजकल इमरान की गैर मामूली संजीदगी इसकी समझ से बालातर थी। रात के 2 बजे थे, जंगल में भयानक सकूत तारीख था। कभी कभार दूर से किसी शेर की धार इस खामोशी के तलसम को दरम बरम कर देती, फिर वही आसाब शिकन खामोशी तारी हो जाती। इमरान सियाह कपड़ों में मलबूस बड़े मोहतात अंदाज में जंगल में चला जा रहा था। वो बार बार रुककर चारों तरफ देखता और फिर आगे बढ़ने लगता। जंगल में काफी दूर बढ़ आने के बाद अब वो और भी ज्यादा मोहतात हो गया, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक डेंजर जोन शुरू हो गया था। एक दरख्त के करीब पहुंचकर इसे खतरे का एहसास होने लगा। वो इस दरख्त के तने से चिमट गया। अंधेरे में काफी दूर चलने के बाद अब इसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी। वो और भी गौर और तवज्जो से चारों तरफ देख रहा था। फिर इसने अपने से तकरीबन 4 दरख्त आगे एक सियापोश के दरख्त पर बैठा देखा। इसने इत्मीनान का सांस लिया कि वो बर वक्त समर गया था, वरना बेखबरी में मारा जाता। इनकी गर्दनें काटने वाली मशीनें बाकी खतरनाक थी और अंधेरे के तीर को कौन रोक सकता है। वो जमीन पर लेट कर रींगने लगा। वैसे से सांप और दीगर जहरीले हशरातुल अर्ज का भी खतरा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। वो मुतवासे रींगता रहा कि रींगते की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी, हद से ज्यादा सुस्त। अब वो इस दरख्त से पहले दरख्त के नीचे पहुंच गया। वो चंद लम्हे तक वहीं पड़ा माहौल का अंदाजा करता रहा। फिर इसने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल नुमा आला निकाला और सामने के रुख इसकी नॉल करके ट्रिगर दबा दिया। एक लम्हे बाद इससे तकरीबन 100 गज दूर झाड़ियों में सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज आहिस्ता से गुजरी हो। इस हथियार का कमाल था कि इससे खास किस्म का रॉकेट निकलता था, जो 100 गज दूर जमीन पर तकरीबन 6-7 फीट घसीटता था, कि सुनने वाले को यही अंदाजा होता था कि वहां कोई चीज गुजरी है। यह हथियार इमरान ही की इजाद थी और वही इससे काफी काम लेता था। जिस जगह सरसराहट हुई, एक लम्हे बाद वहां जू जू की आवाजें आने लगी। चंद लम्हे बाद अचानक एक दरख्त से आवाज आई, नंबर 6 लाइट डालो। ये शायद गीडर की आवाज थी। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और फिर वहां टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी। लेकिन वहां कुछ होता तो मिलता, लेकिन इमरान का मकसद हल हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि इनका लीडर किस दरख्त पर है। अब इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि लीडर कहाँ है। लाइट बुझ गई। कोई भी नहीं है। नंबर 2 जिस दरख्त से टॉर्च जलाई गई थी, वहां से आवाज आई। ठहरो, मैं खुद उतरकर वहां देखता हूँ। मशीन फायर ना करना और टॉर्च जलाए रखो। लीडर की दोबारा आवाज आई। टॉर्च दोबारा जलने लगी। टॉर्च काफी से ज्यादा ताकतवर थी। लाइट के सर्कल में हर चीज साफ और रोशन नजर आ रही थी। इमरान ने जिस दरख्त का अंदाजा लगाया था वो सही निकला। इनका लीडर वहीं से उतरा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लाइट सिपाट की तरफ बढ़ा। लाइट सिपाट में आकर बैठ जाओ। सिपाट की तरफ अचानक वो रुक गया। ना जाने कैसे इसका निकाब खुलकर नीचे गिर पड़ा था। शायद वो मजबूती से ना बंधा होगा। इसने नीचे झुककर निकाब उठाया और फिर वहीं खड़े होकर दोबारा मुंह पर लगाने लगा। लेकिन इमरान के जहन में इसके चेहरे के तमाम खतूत नक्श हो चुके थे। कुदरत इस पर मेहरबान थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक इस तरह लीडर का चेहरा सामने आ जाएगा। लीडर यानी नंबर 2 काफी देर तक वहां इधर उधर देखता रहा, फिर वापस अपने मकान की तरफ मुड़ गया। टॉर्च बुझा दो, कुछ नहीं है, कोई सांप वगैरह होगा, निकल गया, इसने जाते जाते हुक्म दिया और फिर वो वापस अपने मखसूस दरख्त पर चढ़ गया। टॉर्च बुझ गई। अब वहां दोबारा गहरा अंधेरा छा गया। इमरान अब वापस रिंगने लगा। काफी दूर जाने के बाद वो मुड़ा और फिर दाएं जाने रिंगता चला गया। इस तरह काफी देर तक रिंगने के बाद वो चक्कर काट कर अपने अंदाजे के मुताबिक नंबर 2 वाले दरख्त के करीब पहुंच गया। इतनी देर रिंगने के बाद इसकी कोहनियों और घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन इमरान इसकी कब परवाह करता था। और फिर वो इस दरख्त के नीचे रुक गया। वो इस वक्त शरीर खतरे में था, क्योंकि कोई भी चेक कर लेता तो गर्दन कट सकती थी। इसने एक बार फिर जेब से वही मखसूस हथियार निकाला और मुखालिफ सिम्स ने दो फायर बार फिर जेब से वही मखसूस हथियार निकाला और फिर दो फायर कर दिए। वही मखसूस सरसराहट हुई। वो समझ गया कि सबकी तवज्जो इन्हीं सरसराहटों वाले मकाम की तरफ होगी, इसलिए वो तेजी से उठा और फिर फुर्ती लेकिन बेहद एहतियात से दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो काफी ऊंचा चला गया। अब इसे दरख्त पर बैठा हुआ लीडर साफ नजर आने लगा। लीडर का मुंह इधर ही था जिधर ससराहटें हुई थी। वो ऊपर चढ़ता गया। अब वो इसके करीब पहुंच गया लेकिन बेहद एहतियात के बावजूद नंबर टू ने इसकी आहट सुन ली और वो एकदम चौंका और इमरान की तरफ देखने लगा। इसे यकीन इमरान की वहां मौजूदगी का तसव्वुर भी ना होगा, इसलिए वो चंद लम्हे तक रह गया। अब इमरान के लिए छुपना बेकार था। इसने तेजी से जीप की जंप किया और दूसरे लम्हे शाक पर पहुंच गया और फिर इससे पहले के नंबर टू कोई आवाज निकालता इमरान का एक बाजू की गर्दन से गिर हाइल हो गया और दूसरा हाथ इसके मुंह पर मजबूती से जम गया। इमरान खुद एक और शाख से टेक लगाए खड़ा था। नंबर टू ने जद्दोजहद करनी चाहिए लेकिन इमरान जानता था कि हरकत करने से वो कहीं नीचे ना जा पड़े, इसलिए इमरान ने ग्रिप मजबूत कर ली। नंबर टू हिल भी ना सका। चंद लम्हों बाद नंबर टू की गर्दन ढलक गई। सांस बंद होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब मसला था नंबर टू को ठिकाने लगाने का था। इमरान का ध्यान उलझ सा रह गया। इसे इस प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अगर वो नंबर टू को छोड़ता तो वो यकीनन नीचे जा गिरता और फिर मामला खराब हो जाता और फिर इसके डैडी मैट खोपड़ी ने काम दिखाया और सारा मामला हल हो गया। इसने एक हाथ से नंबर टू को संभाले रखा और दूसरे हाथ से अपनी बैट खोलनी शुरू कर दी। बैट खोलकर इसने बड़ी एहतियात से नंबर टू की गर्दन को एक तने के साथ बैट से कस दिया। अब नंबर टू गर्दन के बल तने से लटका रहा था। वो दम घुटने की वजह से मर भी सकता था मगर इमरान को अब क्या परवाह थी। इसने नंबर टू का निकाब उतारा और खुद पहन लिया और अपना निकाब इसे पहना दिया। फिर इसने जेबों की तलाशी ली। जेब से एक मुकम्मल अजीब सी शख्स का पिस्तौल निकला। इमरान समझ गया कि ये वही गर्दन काटने वाला आला होगा। इसने इसे जेब में रख लिया। फिर वही एक तने पर एक लगा कर सोचने लगा। मसला था नंबर टू को ठिकाने लगाने का लेकिन कोई सूरत समझ में नहीं आ रही थी। इधर वक्त तेजी से गुजर रहा था और इसे एहसास भी था कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है इसकी पोजीशन खराब होती जा रही है। सुबह होने वाली थी, इसे जो कुछ भी करना था सुबह होने से पहले ही करना था। इसने नंबर टू को पकड़कर इस बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। इसे एहसास हो गया था कि नंबर टू दम घुटने की वजह से मर चुका है। इसने बेल्ट वापस बंद कर दी। इसे यह ख्याल आ गया था। इसने नंबर टू की लाश को टटोला और फिर नंबर टू के कमर से बंधी हुई बेल्ट भी खोल दी। इसने अपनी बेल्ट की क्लिप में दूसरी बेल्ट फंसाई। अब बेल्ट डबल हो चुकी थी। इसने नंबर टू की लाश को कमर पर लादा और ऊपर से बेल्ट के जरिए अपने जिस्म से अच्छी तरह कस लिया। फिर इसने जेब से सरसराहट वाला पिस्तौल निकाला और पीछे के रुख पर फायर कर दिया। मखसूस सरसराहट पैदा हुई। ये क्या बात है, आज ये कैसी सरसराहटें हैं, इमरान ने नंबर टू की आवाज में कहा। मालूम नहीं सर क्या मामला है, एक और दरख्त से आवाज आई। ठहरों में देखता हूँ, तुम बैठे रहो, टॉर्च वगैरह जलाने की भी जरूरत नहीं और ना ही मशीन फायर करना, इमरान ने कहा। ओके सर, जवाब आया और इमरान आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और फिर दरख्त से तेजी से मुखालिफ सिम चलने लगा। वो दरअसल दूसरों को ये मौका भी नहीं देना चाहता था कि वो गौर करें। काफी दूर तक चलने के बाद जो इसने महसूस किया कि वो इन लोगों से खासा दूर निकल आया है। इसने बेल्ट खोलकर नंबर टू की लाश को नीचे रखा और फिर जेब से चाकू निकालकर नंबर टू की लाश के चेहरे को बिगाड़ने लगा। लाश पर चाकू चलाना खासा कराहत आमेज काम था लेकिन बदरजा मजबूरी वो ये काम भी सरंजाम देता रहा। जब इसने महसूस किया कि अब इसे पहचाना नहीं जा सकता तो इसने जल्दी जल्दी इसके कपड़े उतारे और इसे एक गहरे से गड़े में फेंक दिया। इसने सब काम खासा बुलंद जारी में किया था क्योंकि ज्यादा देर दूसरों को शक में मुबतला कर सकती थी। चाकू उसने घास पर साफ किया और बंद करके जेब में डाल लिया। अब वो तेजी से वापस दरख्त की तरफ चला। कोई भी नहीं है, मैं अच्छी तरह देख आया हूँ, इसने दरख्त के पास आकर जोर से कहा और फिर दरख्त पर चढ़ गया। अब वो इत्मीनान से दरख्त पर बैठ गया। मुकद्दर ने साथ दिया था और सबसे बड़ा मसला हल हो चुका था। वैसा भी सोचकर हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ बखैर खूबी कैसे हो गया। बहरहाल चूंकि सब कुछ हो चुका था इसलिए इसे कुदरती तौर पर खुशी हो रही थी। सुबह के 6 बजे दरख के तने वाले दरवाजा खुला, वहां से 6-7 निकाबपोश बाहर निकले। इमरान समझ गया कि ड्यूटी तब्दील होने का वक्त आ गया है, चुनाचे वो दरख के नीचे उतर आया और फिर मुख्तलिफ दरख्तों से 6-7 निकाबपोश उतर आए। आने वालों में से एक सीधा इमरान की तरफ आया। इमरान के करीब आकर वो रुक गया। इसने आहिस्ता से कहा, शैतान। इमरान एक लम्हे के लिए झिटका, फिर इसने अंदाजे से जवाब दिया, 10 करोड़ में 2 शैतान। ओके डियर, इसने जवाब दिया और इमरान और उसके साथी दरवाजे में दाखिल हो गए। इमरान एक दफा पहले आ चुका था इसलिए वो बड़े आराम से गुजरता चला गया। एक कमरे के सामने वो रुक गया। इस कमरे में बड़ा सा तुर्क 2 का हिंसा पड़ा हुआ था। इसने सोचा नंबर 2 का यही कमरा होगा। इसने आहिस्ता से दरवाजा बंद करके चिटकुनी लगा दी और फिर मुंह से निकाब उतारा और फिर जेब से मेकअप बॉक्स निकालकर बाथरूम में घुस गया। नंबर 2 का चेहरा इसके जहन में था, चुनाचे इसने मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप चूंकि इसने अंदाजे से किया था इसलिए इसे शक भी था कि आया इसने सही मेकअप भी किया है या नहीं, क्योंकि वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। चुनाचे इसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसे मेज के दरवाजे से नंबर 2 की तस्वीर मिल गई और फिर ये देखकर वो अपने जहन और याददाश्त की दाद देने लगा। केस ने सिर्फ अंदाजे की बिना पर इतना मुकम्मल मेकअप कर लिया। इसने इस कागजात को बगौर पढ़ना शुरू कर दिया जो मेज की दराज से निकले थे। इन कागजात से इसे इल्म हो गया कि नंबर 2 का असल नाम रॉबर्ट है और वो पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है। ये एक अहम इंकशाफ था। अब इमरान की समझ में कुछ कुछ साजिश आती जा रही थी लेकिन ये सिर्फ अंदाजे ही थे। अभी वो कागजात के मुताले में ही मसरूफ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। इसने जल्दी से कागजात दोबारा दराज में डाले और खुद उठकर दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका अंदाज मुअद्दबाना था। क्या बात है, इमरान ने इसका अंदाजा महसूस करते हुए तहखाना लहजे में पूछा। सर आपको चीफ बुला रहे हैं, मगर इसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मगर क्या लगा रखी है, सीधी तरह बात करो, इमरान ने आंखें दिखाई। सर अभी तक आपने कपड़े भी नहीं बदले, इसने आखिर कह ही दिया। तुम अपने काम से काम रखो, इमरान ने इसे बुरी तरह झड़क दिया। सॉरी सर, इसने सर झुकाकर कहा और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने कपड़ों वाली अलमारी खोली। इसे एक सूट जरा सा मैला नजर आ गया कि ये 1-2 दिन का पहना हुआ है। इसने फुर्ती से वही सूट पहन लिया और फिर वो दरवाजा बंद करते हुए गैलरी में चला गया। इसे यकीन था कि चीफ वही मेजर अशफाक ही होगा और इसका दफ्तर वो पहले देख चुका था, इसलिए इसे वहां तक जाने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा। वो दरवाजे के पास पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक गया। इसने कंफ्यूजी नजर अपने सरापे पर डाली और फिर मुतमईन होकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम और अंदर से आवाज आई और इमरान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेजर अशफाक मेज के पीछे मौजूद था। शैतान, मेजर अशफाक ने बगौर इसे देखते हुए कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, इमरान ने बिना झिझक जवाब दिया और मेजर अशफाक के चेहरे पर कदर इत्मीनान के तासुरात फैल गए। बैठो, मेजर अशफाक ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान कदर मौदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। नंबर 2, रात को कोई खास बात हुई, मेजर अशफाक का लहजा सर्द था। यह चीफ, रात 3 बार कुछ अजीब किस्म की सरसराहटें सुनाई दी जैसे दूर कोई झाड़ियों में रींग रहा हो, लेकिन चेकिंग के बावजूद कोई मुश्तबा चीज नजर नहीं आई, इमरान ने जवाब दिया। तुमने खुद चेक किया, मेजर अशफाक का लहजा मनीखेज था। यस चीफ, 2 बार मैं खुद चेक करने गया, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब इसके दिल में शक सर उभारने लगा कि जरूर इसकी शख्सियत पर शक हो गया हो। आखिरी बार तुमने कोई खास चीज चेक की, मेजर अशफाक ने कहा। मैं समझा नहीं चीफ, इमरान ने हैरत से पूछा। जहां तुम आखिरी बार चेक करने गए वहां कोई खास चीज, मेजर अशफाक का लहजा इंतहाई मनीखेज हो चुका था। नो सर, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह चौंकना हो गया था क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया कि असल नंबर 2 की लाश मिल चुकी है और वो पहचानी जा चुकी है। मेजर अशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा। सुनो, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है क्योंकि तुम हमारे खास साथी हो, लेकिन कल रात डेनियल जोन में कुछ अजीब और गरीब खेल हुआ है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक जगह लाश मिली है। लाश पहचानी नहीं जा सकी क्योंकि दरिंदों ने इसे बुरी तरह उधेड़ दिया है। मेजर अशफाक एक लम्हे के लिए रुक गया। इमरान ने इत्मीनान की तवील सांस ली। اس کے علاوہ ڈینجر زون میں مختلف جگہوں پر گھاس پر اس طرح کے نشانات ملے ہیں جیسے وہاں کوئی آدمی کونیوں کے بل گھسٹتا رہا ہو. میجر اشراف نے دوبارہ کہا, بڑی عجیب و غریب اطلاعات ہیں. عمران نے قدرے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا, ہاں لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز اطلاع یہ ہے کہ یہ نشان اس درخت کے نیچے بھی موجود ہیں جس پر تم موجود تھے. میجر اشراف نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا, کیا؟ عمران اچھل پڑا, وہ شدید حیرت کی کامیابی اداکاری کر رہا تھا. اب تم کیا کہتے ہو؟ میجر اشراف نے اس کی حیرت سے قدرے متاثر ہوتے ہوئے کہا. کمال ہے چیف, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے اس طرح پوچھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو. یہ ہو چکا ہے مسٹر ٹو, مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں میں آپ کی پوزیشن کیا سمجھوں. میجر اشراف کے لہجے میں ترقی آ گئی تھی. میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے بے چارگی سے کہا. میجر اشراف چند لمحے تک بغور عمران کو دیکھتا رہا. نمبر ٹو, آپ کی پوزیشن مشکوک ہو چکی ہے, اس لیے آپ مکمل تحقیقات ہونے تک گیس سے باہر نہیں جا سکتے. آئندہ سے آپ باہر نگرانی کے بجائے پروڈکٹ یونٹ سے میں کام کریں گے, میجر اشراف نے کہا. ٹھیک ہے, آپ بے شک تحقیقات کر لیں, عمران نے مختصر سا جواب دیا. میرے ساتھ آؤ, میجر اشراف اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میجر اشراف کے پیچھے وہ کمرے سے باہر نکل آیا. مختلف گلیوں سے نکلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے جہاں بے شمار عجیب و غریب مشینیں کام میں مصروف تھیں. ہر مشین پر آپریٹر موجود تھا. عمران مشینوں کو دیکھنے لگا. میجر اشراف ہال سے گزرا تھا, اب وہ دونوں ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے. دروازے پر موجود چوکیدار نے میجر اشراف کو دیکھتے ہی پھٹی سے دروازہ کھول دیا اور پھر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. یہاں ایک بہت بڑا رن وے بنایا گیا تھا اور لطیف یہ کہ تمام رن وے زمین میں دوست تھا, لیکن پوری چھت پر کہیں بھی ستون نہیں لگائے گئے تھے. رن وے کے ارد گرد میزائل ہینگر بنے ہوئے تھے. دروازے کے قریب ایک عمارت تھی. میجر اشراف اس میں چلا گیا, عمران بھی ساتھ تھا. وہاں جو آدمی موجود تھے وہ میجر اشراف کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے. شیطان, میجر اشراف نے کہا. 10 کروڑ میں دو شیطان, ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا اور عمران دل دل میں مسکرا اٹھا. مسٹر کمار, آپریشن کس پوزیشن میں ہے؟ میجر اشراف نے پوچھا. سر ایک پرسٹنٹ کام باقی رہ گیا ہے, کمار نے مہربانہ لہجے میں جواب دیا. گرانڈ کنٹرول روم اور کافیا گیٹ بن چکا ہے. میجر اشراف نے دوسرا سوال کیا. جی ہاں, آج یہ دونوں مکمل ہو رہے ہیں, کمار نے جواب دیا. دیکھو کام جلد از جلد ختم کرو, حالات خراب ہیں, پریزیڈنٹ بار بار زور دے رہے ہیں, میجر اشراف نے تہکمانہ لہجے میں کہا. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں جناب, کمار نے جواب دیا. دیکھو کل سے مسٹر رابرٹ آپ کے ساتھ کام کریں گے, میجر اشراف نے کہا. اوکے سر, مگر, کمار نے قدرے جھکتے ہوئے کہا. ہاں میں نے ان کی ڈیوٹی تبدیل کر دی ہے, میجر اشراف نے کہا. اچھا میں چلتا ہوں مسٹر رابرٹ, آپ ان سے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں ڈسکس کر لیں. کل سے آپ نے یہی کام کرنا ہے, میجر اشراف نے کہا اور پھر وہ عمارت سے باہر نکل گیا. بیٹھیے مسٹر رابرٹ, کمار نے میجر اشراف کے جانے کے بعد عمران سے مسکراتے ہوئے کہا. عمران بیٹھ گیا. آپ کی ڈیوٹی میں تبدیلی کی کوئی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ کمار کا ساتھی پہلی بار بولا. نہیں بس چیف کی مرضی, ہم تو حکم کے غلام ہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ٹھیک ہے, آپ کل ڈیوٹی پر آ جائیں, آپ کنٹرول روم میں کام کریں گے, عمران نے کہا. اچھا مجھے اجازت دیجیے, آپ کچھ سر میں گرانی سے محسوس ہو رہی ہے, عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملا کر عمران سے عمارت سے باہر نکل آئے. کیپٹن شکیل ٹھیک ہو چکا تھا لیکن عمران کمزوری باقی تھی. جولیا جیسے ہی ہوٹل واپس آئی, صفدر نے اسے ٹیلی فون پر عمران کا پیغام دے دیا. جولیا نے عمران سے ہدایت لینے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اسے میک اپ کر کے اپنا ہدیہ تبدیل کر لیا. اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگی. ہیلو, رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز آئی. کیپٹن, میں جولیا بول رہی ہوں, آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جولیا نے کہا. ٹھیک ہوں, میرے لائے کوئی کام؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا. ہاں آپ کے لیے کام نکل آیا ہے, آپ دانش کالونی کے کوٹھی نمبر 130 میں جائیں, وہاں وہی طویل اقامت جس سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا, آپ نے اس کی جگہ لینی ہے. صفدر بھی آپ کے ساتھ جائے گا, وہ اس طویل اقامت کو اغوا کر کے لے آئے گا. میں صفدر کو ہدایت دے دیتی ہوں, جولیا نے اسے کام کی نوعیت سے آگاہ کیا. ٹھیک ہے, میں بھی صفدر کے ساتھ چلا جاتا ہوں, کیپٹن شکیل نے جواب دیا. اپنے واچ ٹرانسمیٹر بھی ساتھ لیتے جائیے گا, جولیا نے ہدایت کرتے ہوئے کہا اور پھر طویل اقامت طالب کے متعلق عمران سے ملی ہوئی معلومات کیپٹن شکیل کو بتا دی. آپ بے فکر رہیں مس طالب, میں غالب کی جگہ بخوبی کام کر لوں گا، کیپٹن شکیل نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے تھینک یو، جولیا نے کہا اور کنسٹرکشن کارڈ دیا۔ اب وہ صفدر کو رنگ کر رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ میں جولیا بول رہی ہوں، جولیا نے کہا۔ او مس جولیا، خیریت ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم کام کے لیے تیار ہو جاؤ، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو ریڈی ہوں مس جولیا، صفدر نے کہا۔ تو مسٹر ایور ریڈی صاحب، آپ اور کیپٹن شکیل نے دانش کالونی کی کوٹھی نمبر 130 میں جا کر طویل اقامت طالب جگرو کا سرغنہ ہے، اسے اغوا کرنا ہے۔ کیپٹن شکیل اس کی جگہ لے لے گا اور آپ نے اسے اغوا کر کے نواب صاحب کے محل میں جوزف کے حوالے کر دینا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طالب کو وہاں چھوڑ کر آپ کیپٹن شکیل کے ساتھ کی جگہ لے لیں، جولیا نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ بس اتنا سا کام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ میرے خیال میں طویل اقامت وہی ہے جس سے میرا اور کیپٹن شکیل کا ٹکراؤ ہوا تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، صفدر نے کہا۔ وائس ٹرانسمیٹر ساتھ لے کے جانا، جولیا نے ہدایت کی۔ اچھا، صفدر نے جواب دیا اور جولیا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے فوری طور پر یہ ہوٹل چھوڑ دینا تھا، یہ عمران کی ہدایت تھی، اس لیے وہ اپنے بیگ میں اپنی ضروری چیزیں ڈالنے لگی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر وہ باہر نکل آیا۔ گیلری میں مدھم سی روشنی تھی، وہ آہستہ سے چلتا ہوا گیلری کراس کرنے لگا۔ مختلف گیلریوں سے گزرنے کے بعد وہ امید اشفاق کے آفس کے سامنے رک گیا۔ آفس کا دروازہ بند تھا، عمران نے جیب سے ایک چھوٹی سی تار نکالی اور پھر وہ تار اس نے لاک میں ڈال دی اور اسے ادھر ادھر مخصوص انداز میں گھمانے لگا۔ ایک لمحے بعد ہلکی سی کٹک کی آواز سے تالا کھل چکا تھا۔ عمران نے تار نکال کر دوبارہ جیب میں ڈال لی اور دروازے کو آہستہ سے کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا، کمرہ بالکل تاریک تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر جلائی اور پھر ٹارچ کا دائرہ تمام کمرے میں گھمایا۔ ٹارچ نکالنے سے پہلے اس نے جیب سے ایک نقاب نکال کر منہ پر باندھ لیا تھا، پھر اپنا اطمینان کر کے وہ سیدھا آفس ٹیبل کی طرف بڑھا اور پھر اسی تار سے اس نے دروازے کی تالے بھی کھولے۔ اس نے دروازوں سے مختلف فائلیں نکال کر دیکھنی شروع کر دی، لیکن کوئی فائل بھی اسے نہ ملی جسے وہ مشکوک گردان سکتا۔ آخری دراز سے اس نے تمام کاغذات نکالے تو اچانک اس کا ہاتھ دراز کے آخری حصے میں لگا۔ وہاں کونے میں ایک چھوٹا سا ہک محسوس ہوا۔ اس نے ہک پکڑ کر کھینچا تو دروازے کی سائڈ والی جگہ سے ایک اور خفیہ دراز باہر نکل آئی۔ عمران نے پھرتی سے دروازے میں ہاتھ ڈالا، دراز میں صرف ایک ہی فائل تھی۔ اس نے فائل کھول کر دیکھنا شروع کر دی۔ جو جو وہ فائل پڑتا گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی چلی گئیں۔ یہ ایک بھیانک سازش تھی اور اب وہ تمام سازشوں کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا اور فائل کے فوٹو کھینچنے شروع کر دیے، مگر دوسرے لمحے ٹس کی آواز آئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہینڈز اپ، ایک گرجدار آواز آئی اور عمران نے دیکھ کر چار ٹامی گنیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ہر کونے میں ایک ٹامی گن برابر کھڑا تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا لیے تھے، اتنے میں دروازہ کھلا اور میجر اشفاق دو اور آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عمران کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور پھر ایک چکر کاٹ کر عمران کے پیچھے آ گیا۔ پھر اس نے عمران کی تلاشی لیا اور اس کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس کا نکاب اتار دو، میجر اشفاق نے حکم دیا اور اس آدمی نے پھرتی سے عمران کے منہ سے نکاب گھسیٹ لیا۔ رابرٹ تم؟ میجر اشفاق حیرت سے اچھل پڑا۔ عمران خاموش کھڑا رہا۔ نہیں، تم رابرٹ نہیں ہو سکتے، ورنہ تمہیں حکم میں لگے ہوئے الارم کا ضرور علم ہوتا۔ تم ضرور رابرٹ میک اپ میں کوئی اور ہو، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ نمبر L1 میک اپ واشنگ سولوشن لاؤ، اس نے ایک ساتھی کو حکم دیتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چل نمو بعد وہ سولوشن کی بوتل لے آیا۔ اسے کرسی سے باندھ دو، میجر اشفاق نے حکم دیا۔ عمران تامی گنوں کی وجہ سے مجبور تھا، تامی گنوں کے سامنے وہ اپنے سنگ اور بھی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے کرسی سے باندھ دیا گیا اور پھر میجر اشفاق کے کہنے پر اس کا منہ اسی سولوشن سے دھویا گیا۔ تو مسٹر علی عمران، عمران کا سر چہرہ دیکھ کر میجر کو ایک اور شوق لگا۔ ہاں میجر اشفاق، یہ میں ہوں، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ مگر نمبر 2 کہاں ہے؟ اس نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ پکوڑے لینے گیا ہوا ہے، عمران اتنے دنوں کی سنجیدگی کے بعد دوبارہ موڈ میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ غصے سے میجر اشفاق کی آواز پھٹ گئی۔ ارے تم پکوڑوں کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، عمران نے حیرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ शेट अप मेजर स्टार्क झाड़ा। आहिस्ता माई डियर मेजर शैतान, आहिस्ता, मैं बहरा नहीं हूँ, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा समझे, मेजर स्टार्क बुलाया। क्यों, मैंने कोई नेकी का काम कर दिया है क्या, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेजर खामोश रहा। चंद लम्हे सोचने के बाद वो एक अलमारी की तरफ बढ़ा, वहां से ट्रांसमीटर निकाला और फिर इसका बटन दबाकर कॉल करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, शैतान स्पीकिंग ओवर, वो बार बार यही फिक्रा दोहरा रहा था। वाह वाह, क्या खून नाम रखा है अपना, बिल्कुल इसम बाकी, इमरान ने हाँक लगाई। तुम खामोश रहो तो बेहतर है, मेजर अशफाक ने इसे डांटते हुए कहा। कमाल है भला, शैतान से भी बेहतर की उम्मीद हो सकती है, इमरान बात ना आया। नंबर एलवन, अगर आप ये बोले तो बिरादरी गोली मार देना, मेजर ने अपने साथी को हुक्म दिया और फिर खुद कॉल में मसरूफ हो गया। हेलो शैतान स्पीकिंग ओवर, दूसरी तरफ से आवाज आई। यस शैतान, 10 एंड 4 ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ताली में अशफाक बोल रहा हूँ, फौरन टारगेट पर पहुंचो, एक अहम मसला है ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। खैरियत है, इस पर क्या मसला है, आ पड़ा ओवर, तालिम ने पूछा। तुम जल्दी पहुंचे, मैं डेंजर जोन तुम्हारे बारे में इतना देता हूँ ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। ओके मैं आ रहा हूँ ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से आवाज आई और मेजर ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। नंबर एलवन, तुम डेंजर जोन में शैतान की आमद की इतला दे दो, मेजर अशफाक ने कहा। तो नंबर एलवन फुर्ती से बाहर निकल गया। मेजर अशफाक इमरान के साथ कुर्सी पर आ बैठा था। सुबह हम पर शक कैसे हुआ, इसने नरम लहजे में पूछा। तुमने खुद ही तो ख्वाब में आकर मुझे बता गए थे, इमरान ने जवाब दिया। तुम सीधे तरीके से नहीं बताओगे, मेजर अशफाक ने कहा। यह आज तक तरीके का सीधा और उल्टापन मेरी समझ में नहीं आया, इमरान ने कहा। तालिब को आ लेने दो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा तो क्या मतलब है साहब, कि प्राइमरी स्कूल में टीचर लगे हुए हैं जो समझाने में माहिर हैं, इमरान ने कहा। हाँ ऐसे ही समझ लो, मेजर भी अब मजे लेने लगा, जहाँ तुम जैसे टीचर हो तो फिर यकीन मिसाले दर्जगाह होगी, इमरान ने कहा। तुम खामोश नहीं रह सकते, मेजर को दोबारा गुस्सा आने लगा। वाह वाह, क्या खालिद उस्तादाना लहजा है, इमरान ने बाज ना आया। मेजर अशफाक खामोश रहा, इमरान भी किसी सोच में डूब गया। काफी देर गुजर गई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम ऑन, मेजर अशफाक बोला। दरवाजा खुला और 2 निकाबपोश अंदर आ गए। इन्होंने अंदर आकर अपने निकाब उतार दिए, इनमें से एक तालिब और दूसरा इसका साथी था। ये कौन है, इसने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इमरान मुस्कुराया, क्योंकि वो जाना था कि इस वक्त तालिब के रूप में कैप्टन शकील और दूसरा यकीन सफदर होगा, लेकिन दिल ही दिल में इनके मेकअप की दाद देने लगा। इतने मुकम्मल मेकअप में देखे अगर इमरान जोले को हिदायत ना दे आया होता तो यकीन धोखा खा जाता। ये मिस्टर अली इमरान है, यहाँ के इंटेलिजेंस के ऑफिसर, जिनके मुतालिक मैंने इस दिन तुम्हें कोठी में बताया था, मेजर अशफाक ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने इन्हें मुतमईन कर दिया, तालिब ने कहा। हाँ इस वक्त सूरत हाल यही मालूम होती थी, लेकिन अब ये तुम्हारे सामने है, मेजर अशफाक ने कहा। इसे कहाँ से गिरफ्तार किया है, तालिब ने कहा। ये रॉबर्ट नंबर 2 के रूप में यहाँ मौजूद था, आज फाइल नंबर 3 निकालकर देखने लगा तो अलार्म की वजह से पकड़ा गया, मेजर अशफाक ने कहा। ओह तो इसका मतलब है कि सब कुछ इसकी नजर में आ गया है, तालिब ने कहा। हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि इसका क्या किया जाए, मेजर अशफाक ने कहा। करना क्या है, गोली मार दो, तालिब ने लापरवाही से कहा और इमरान कैप्टन शकील की अदाकारी पर इश्क कर उठा। पहले इस पर तशद्दुद करके इसके साथियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें, मेजर अशफाक ने कहा। यार तुम लोग भी बिल्कुल सुगत हो, मेरे सामने ही मेरे मुतालिक प्रोग्राम बना रहे हो, इमरान बोल पड़ा। क्या तुम शराफत सब कुछ नहीं बताओगे, तालिब ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। वाह वाह क्या बात है, अब शैतान भी शराफत का नाम लेने लगे, इमरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम सब लोग जाओ, सिर्फ एक टामी गन वाला रह जाएगा, तालिब ने अचानक टामी गन वालों से मुखातिब होते हुए कहा। क्यों, मेजर हैरान रह गया। खौम करना मजमा लगाने से क्या फायदा, ये बंदा हुआ तो ही है, एक टामी गन काफी है, तालिब ने जवाब दिया और मेजर अशफाक कन्ने उछलाकर रह गया। इमरान कैप्टन शकील की जहानत की दाद देने लगा। सबके जाते ही तालिब ने जेब से एक लंबा सा चाकू निकाला और उसे खोलकर इमरान की तरफ बढ़ाया। सब सही सही बता दो वरना, तालिब ने चाकू की नोक इसके बाजू पर रख दी। वरना कैप्टन साहब, इमरान ने हंसते हुए कहा। कैप्टन, कौन कैप्टन, तालिब ने हैरत से कहा। कैप्टन शकील और कौन, इमरान ने कहका लगाते हुए कहा। तुम वक्त जाया कर रहे हो, बताओ, अचानक तालिब को गुस्सा आ गया। इमरान उलझन में पड़ गया कि कैप्टन शकील इतने वाजे इशारे के बावजूद अदाकारी कर रहा है। پارٹ 7 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب 10 کروڑ میں دو شیطان کا بقیہ حصہ پارٹ 8 میں سماعت فرمائیے.